ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 24 बिलियन डॉलर पर रिकॉर्ड किया गया था, मगर पिछले कुछ सालों से दोनों देशों के बीच व्यापार बातचीत जोरों से चल रही है और इस दो तरफा कारोबार को 100 बिलियन डॉलर और सेवाओं को 15 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने में दोनों सरकारें जुटी हुई हैं। पिछले साल सितंबर में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने घोषणा की थी कि वे 2022 के अंत तक एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे, मगर उससे पहले क्रिसमस तक एक प्रारंभिक फसल व्यापार समझौते पर भी हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया गया था जो असफल रहा। तो चलिए बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय मूल के उद्योगपति डीडी सक्सेना से और पूर्व ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर अमिताभ मट्टू से, जो हमें इस विषय पर अपना विश्लेषण दे रहे हैं। SBS हिंदी प्रोग्राम में आपका स्वागत है अमिताभ जी।
नमस्कार नताशा जी।
तो ऑस्ट्रेलिया और भारत के संबंधों को आप गहराई से समझते हैं, तो सबसे पहले आप हमें बताइए इस फ्री ट्रेड समझौते का क्या महत्व है और क्यों दोनों देशों के लिए ये इतना जरूरी है।
देखिए, आप जानते हैं कि आज कल की दुनिया में सबसे जो संबंध बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी है आर्थिक संबंध बनने चाहिए और बढ़ने चाहिए, और फ्री ट्रेड एरिया एक जरिया है जिससे हम इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी कि आर्थिक एक बॉन्ड्स बढ़ा सकते हैं। और पिछले 2-3 साल से आपको पता है कि हम यहाँ के जो कॉमर्स के ट्रेड के ब्यूरोक्रेट्स हैं और भारत के ब्यूरोक्रेट्स यही कोशिश कर रहे हैं कि एक एग्रीमेंट बना सके।
जी, पिछले कुछ सालों से अमिताभ जी दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए बहुत सारी बातचीत चल रही है। कम से कम 13 राउंड्स ऑफ नेगोशिएशन हुए हैं और एक अर्ली हार्वेस्ट डील को जो दिसंबर में होने वाली थी उसको भी तय किया गया, मगर वो भी नहीं हो पाई। तो क्या आप दोनों देशों को एक कदम आगे बढ़कर सीधा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अंतिम रूप देने में ही समझदारी नहीं रहेगी?
बिल्कुल, मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन इसके लिए कभी आप ब्यूरोक्रेसी पे जो नौकरशाही है उस पे डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि आपको सियासती लीडरशिप चाहिए। और मेरा मानना है कि इस ये मौका है, पहले भी जब प्रधानमंत्री टोनी एबर्ट थे, जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत की थी, तब भी एक फैसला किया था कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को आगे बनाना चाहिए और बढ़ाना चाहिए। लेकिन अब आप जानते हैं टोनी एबर्ट स्पेशल एनवॉय है और डैन टीहान मिलेंगे वहां उनके काउंटर पार्ट जो है मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स गोयल साहब से, और मुझे मेरा मानना है कि वो अब अपने ब्यूरोक्रेट्स को अपने सेक्रेटरीज को एक आदेश देंगे कि जल्दी से जल्दी एक एग्रीमेंट तैयार करें। मुश्किलें होती हैं क्योंकि देखिए, अगर आप आर्थिक नीतियों पे एक एग्रीमेंट करना चाहते हैं तो अलग अलग स्टेक होल्डर जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं होते हैं, फार्मिंग सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, अलग अलग सेक्टर्स हैं, वो अपनी बात रखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट दस्तखत ना हो जिससे उन्हें नुकसान हो सके। लेकिन सियासती लीडर्स को जरूरत है कि एक ओवरऑल पिक्चर देखें कि क्या ये देश के हित में है या नहीं। मेरा मानना है कि ये इस वक्त बहुत जरूरी है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, जिस वक्त चाइना का इतना एक राइज हो रहा है और चाइना की जो पॉलिसीज है इतनी खतरनाक बन सकती हैं, तो एक एग्रीमेंट पे जल्दी से जल्दी वो एक दस्तखत कर।
आपके अनुमान से डैन टीहन के इस दौरे से क्या होने वाला है?
देखिए, दो चीजें होती है, आपको समझना चाहिए अर्ली हार्वेस्ट और लेट हार्वेस्ट या कंप्लीट हार्वेस्ट में फर्क क्या है। कि ये जैसे है कि आपका एक सेबों का पेड़ है, अगर आप चाहते हैं कि पहले ही उस फ्रूट को कोल्ड स्टोरेज में रख के ताकि कहीं ये ना हो बाढ़ आए ना कोई स्टॉर्म्स की वजह से वो फल खराब ना हो जाए। लेकिन ये मुश्किलात होती है कि अगर आप अर्ली हार्वेस्ट करते हैं तो आपको पूरा फायदा नहीं मिलता है। लेकिन जहां तक ब्यूरोक्रेसी का सवाल है, मेरा मानना है कि अर्ली हार्वेस्ट अगर आप करेंगे वो इस वक्त पॉसिबल होगा और दस्तखत हो सकते हैं और जल्दी से जल्दी दस्तखत करने चाहिए अर्ली हार्वेस्ट पे और उसको फिर आस्ते आगे बढ़ाएं।
जी अमिताभ जी, कुछ महीनों में ही फेडरल इलेक्शन होने वाले हैं, तो अगर सरकार बदल गई उससे इस डील पर कोई असर पड़ सकता है?
नहीं, मेरा मानना है कि ये देखिए, लेबर और लिबरल पार्टीज दोनों चाहते हैं कि भारत के साथ संबंध आगे बढ़ाया जाए। मेरा मानने है कि पूरा पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम जो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में है वो चाहता है कि गहरे संबंध हों, अच्छे संबंध हों, और इस वक्त जबकि चाइना के साथ इनके संबंध उतने अच्छे नहीं हैं।
जी, एक जो मुद्दा है वीज़ा का मुद्दा, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, और इस समझौते में क्या ये मुद्दा एक अंश हो सकता है? क्योंकि अगर आईटी जैसे सर्विसेज की बात करें तो उस हिसाब से तो वीज़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है।
बिल्कुल आपका सही है, और ये कभी होता है कि आप शायद एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का वीज़ा या ह्यूमन कैपिटल की मोबिलिटी को हिस्सा ना बना सके, लेकिन आप एक एडिशनल प्रोटोकॉल या एडिशनल एग्रीमेंट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में कोई ऐसा पॉलिसीज नहीं बनाई गई ताकि ऑस्ट्रेलियंस को वीज़ा मिले या ऑस्ट्रेलियंस अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में काम कर सकें, लेकिन एक एडिशनल प्रोटोकॉल हुआ जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के साथ के लिए है कि ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स जो H3 वीज़ा लेके अमेरिका में जाके काम कर सकते हैं, और उनके लिए अलग से कोटा है H1B के अलावा 10,000 ऑस्ट्रेलियंस वहां जाके काम कर सकते हैं। वैसे ही भारत को इस एग्रीमेंट में नहीं, लेकिन साथ में प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्राइम मिनिस्टर मॉरिसन या जो डॉक्टर जयशंकर और मरीस पेन एक समझौते पे आए कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया को भी स्किल्ड मैन पावर की जरूरत है और भारत के पास वो स्किल्ड मैन पावर है, और एक एडिशनल एग्रीमेंट तैयार करें ताकि भारत के जो स्किल्ड मैन पावर को फैसिलिटेट हो यहाँ एम्प्लॉयमेंट मिलने में और एक पाथवे हो परमानेंट रेजिडेंसी की तरह।
जुड़ते हैं मेलबर्न में रह रहे डीडी सक्सेना से, जो भारतीय मूल के उद्योगपति हैं और दोनों ही देशों में निवेश कर चुके हैं। तो आप पहले हमें बताइए, दोनों देशों में आपने अपने व्यवसाय को जमाया हुआ है, तो हमें उस विषय में कुछ बताइए।
देखिए, हमने ऑस्ट्रेलिया में एक प्रोजेक्ट लगाया है वागा वागा में, कनोला फैक्ट्री प्रोसेसिंग, जिससे कि कनोला ऑयल बनता है और कनोला वेजिटेबल प्रोटीन मील जो कि एनिमल फीड में जाता है। तो ये फैक्ट्री जो है ये करीब 150 मिलियन डॉलर का प्लांट है और ये ऑस्ट्रेलिया में लास्ट 12 साल में सबसे बड़ा फूड और एग्री बिजनेस में नया ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है और इसमें बहुत कुछ इंडियननेस है। पूरी इंजीनियरिंग डिजाइन इंडिया से हुई, 80% इक्विपमेंट इंडिया से आया, 35 सबसे ब्राइट इंजीनियर्स जो हैं जो हमारे लिए यहाँ चलाते हैं फैक्ट्री, वो सब बड़ी बड़ी कंपनियों से, कारगिल से, विलमार से, अदानी से, सब यहाँ आए
जी।
और बेसिकली इंडियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये पहला, और बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए, दीज वर द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट्स इन अ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। दूसरा, हमने इंडिया में एक काफी छोटे तौर पे बट मतलब हाईटेक प्लांट, ये यहाँ पे यूनिबिक बिस्किट्स थी जो एनजैक बिस्किट या सेलेक्ट, ये लोग वेट वॉचर्स स्पेशल ब्रांड्स बनाते थे इटालियन ब्रांड्स के लिए, इसको मैंने लॉन्च करा इंडिया में।
अच्छा।
इंडिया खुद गया 2004 में, आई ओन्ड नियरली 30% ऑफ द कंपनी, एंड यूनिबिक काफी बड़ी कंपनी थी यहाँ उस समय, एंड दे वर प्रमोटिंग एंड ग्रोइंग एग्रेसिवली। तो इंडिया एंटरप्राइज में हम लोगों ने जब शुरू करा तो वो प्लांट, मतलब जितने हम लोगों ने पैसे सोचे थे उतने में प्लांट लगा, और दूसरी बात यह है कि ये पूरा प्रोजेक्ट साल भर के अंदर हो गया। So between the time we formed the company, got the approvals, and were manufacturing. Now, that doesn't mean to put up a project in India is difficult or easy or short or it doesn't meet. But मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि perception की इंडिया में that is the project.
जी, मैं और मैं उसी पे आना चाहती थी कि
तो एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एक ये यूनिबिक बिस्किट आज करीब करीब 1,000 करोड़ की कंपनी हो गई. इट्स अ सिंगल लार्जेस्ट ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्ट विच इज सोल्ड इन इंडिया. ये 1.5 लाख आउटलेट्स में जाता है, कॉफी स्पेशलिटी एक्सपोर्ट्स एटसेट्रा. एंड इन कुकी बिजनेस इट इज द नंबर वन ब्रांड. और मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू है कि दोनों देशों के बीच में रिश्ता और इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट इन्वेस्टमेंट से होता, खाली ट्रेड से नहीं.
जी बिल्कुल. और मैं उसी पॉइंट पे आना चाहती थी कि जब भी हम ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच ट्रेड रिलेशंस की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की बात सबसे पहले आती है. तो इन्वेस्टर होने के नाते आप हमें ये समझाइए कि दोनों मार्केट कितने अलग हैं और एक इन्वेस्टर को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है.
इन दोनों मार्केट्स तो बहुत ही अलग हैं. ऑस्ट्रेलिया बड़ा होमोजीनियस मार्केट है. हर एक इंसान, चाहे चेयरमैन हो, चाहे ट्रैम ड्राइवर हो, चाहे कुछ भी हो, सब वही खाना खाते हैं. सबके पास गाड़ी है, सबके पास है. सो द मार्केट्स में होमोजेनिटी बहुत है. दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का है या किसी भी चीज़ का है, फूड मैन्युफैक्चरिंग का है या माइनिंग में है, इज अ वेरी मोनोपोलिस्टिक मार्केट, डुअलिस्टिक और मोनोपोलिस्टिक मार्केट. तो यहाँ पे तो अगर आपको माल बेचना है तो 70-80% इज डिवाइडेड बिटवीन 3 सुपरमार्केट. सो आइदर यू आर देयर और यू डोंट देयर. पर हिंदुस्तान में आपको फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है क्योंकि आज भी ऑर्गेनाइज सेक्टर इज ओनली 9%. देयर मार्केट डायनेमिक. सेकेंडली, इंडिया इज अ ग्रोथ मार्केट, ऑस्ट्रेलिया इज अ मैच्योर मार्केट. और जो स्किल्स चाहिए वो बहुत अलग है. ऑस्ट्रेलिया में जो स्किल्स मैनेजर्स की हैं वो मेंटेनेंस रोल के लिए अच्छी हैं, रिस्क मैनेजमेंट के लिए अच्छी हैं, लेकिन नई चीज लगाने के लिए बहुत कम है. कंपटीशन में एग्जिस्ट करने की स्किल्स कम है. तो इंडिया में क्या है कि अगर आप ऑस्ट्रेलियन कंपनी जाना चाहे किसी भी चीज में, माइनिंग में, फूड एग्री में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, मेरी पर्सनल राय ये है कि जब तक वो पार्टनरशिप नहीं करेंगे कि मार्केट की डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है स्टेट बाय स्टेट दैट फॉर एन ऑस्ट्रेलियन कंपनी टू गेट इन बाय इटसेल्फ इज अ डिफिकल्ट टास्क. और सबसे ज्यादा जो फैक्टर है जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं बिकॉज रिस्क समझ में नहीं आता है. तो एवरीबडी थिंक्स इंडिया इज टू कॉम्प्लिकेटेड, टू हार्ड. अब अगर इंडिया में आपको सड़क क्रॉस करनी है तो कोई प्रोसेस मैनेजमेंट से नहीं हो सकती, एक्सपीरियंस से हो सकती, जानकारी से. सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट आई एम पुटिंग इट वेरी सिंपलिस्टिकली, बट यहाँ पे क्या है, दो स्किल्स आर लैकिंग एंड दैट माइंडसेट इज लैकिंग. ऑस्ट्रेलिया में काम करने के लिए आदमी को बहुत डिसिप्लिन होना पड़ता है, प्रोसेस ड्रिवन है. और यहाँ ऐसा नहीं कि ब्यूरोक्रेसी नहीं, बहुत ज्यादा, मैंने आपको अपना भी एग्जाम्पल बता दिया, बट ऐसा है कि इट्स अ वेरी लेवल प्लेइंग फील्ड. And therefore, to that extent, it's not because you're a foreigner or not. And once you establish, it's a very transparent, easy place to work. But the market size is restricted and there is no growth. So kya hai ki this market, this is over-regulated, it's a small market, the cost of doing business. And cost structures are very different.
जी, आप दोनों का हमसे जुड़ने का और हमें दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधी जानकारी देने का बहुत बहुत धन्यवाद.